इप्सिता की माँ ने ये बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, क्या किया अब हमने और आप हमसे ऐसे कैसे बात कर रही हैं इप्सिता, अपनी आवाज़ धीमी करिए। इप्सिता ने अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी की लेकिन उसका गुस्सा ज़रा भी कम नहीं हुआ था। मम्मी, आपने हमसे कहा था कि सिर्फ सगाई जल्दबाजी में होगी, शादी में कोई जल्दबाजी नहीं होगी, लेकिन अभी आपने अभिमन्यु की माँ की बात क्यों मान ली? आप एक हफ्ते में शादी करने के लिए कैसे तैयार हो सकती हैं? हम इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाले थे, आपको पता है ना, अभी हमारे फाइनल एग्जाम नहीं हुए हैं। इप्सिता की माँ ने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ तो आपको क्या लगता है, हम रानीसा की बात मानते, उनकी बात से इनकार कर देते? अगर आपको ऐसा लगता है तो हम बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, हमें उनकी बात माननी होगी और उनके हिसाब से ही शादी की तारीख तय होगी। मम्मी, हम उनकी बात का इनकार करने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि आपने हमसे कहा था कि हमारे एग्जाम खत्म होने के बाद ये शादी होगी, तो फिर अब क्या हुआ, कैसे आप लोग अपनी बात भूल सकते हैं? इप्सिता के पिता ने इप्सिता की बात बीच में रोकते हुए कहा, इप्सिता बेटा, आप एग्जाम को लेकर इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? आप बिल्कुल परेशान मत होइए, एग्जाम तो आप शादी के बाद भी दे सकती हैं ना? अपने पिता की बात सुनकर इप्सिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सीरियसली पापा, आपको ऐसा लगता है कि हम शादी के बाद राजमहल से अपने एग्जाम देने शहर से बाहर जा पाएंगे? क्या आपको लगता है? और वो रानीसा हमें इसकी इजाज़त देंगी? प्लीज़ आप हमें झूठी तसल्ली देने की कोशिश मत करिए, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर एक बार हमारी शादी हो गई तो फिर हम अपने एग्जाम कभी नहीं दे पाएंगे। उदय ने इप्सिता की बात सुनकर उसका पूरा साथ देते हुए कहा, हाँ पापा, ऋषि बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें भी ऐसा ही लग रहा है कि रानीसा शादी करने में कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर रही हैं। आखिर इतनी जल्दी शादी करने की कोई वजह, कोई तो रीज़न होगा ना, और अगर हम उनकी सारी बातें इसी तरह से मानते रहे तो। उदय बोल ही रहा था कि सुहासिनी जी ने उदय को घूरते हुए कहा, तो क्या उदयवीर, भूलिए मत कि आप अपने पिता से बात कर रहे हैं, अगर ये शादी एक हफ्ते में हो रही है तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी शादी के बाद क्या ही ज़रूरत है आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की, जब आपकी शादी इतने बड़े राजवंश राजपरिवार में हो रही हो तो आपको अपनी पढ़ाई और एग्ज़ाम की टेंशन ना लेकर बल्कि अपने ससुराल की जिम्मेदारियों की टेंशन लेनी चाहिए। और क्या करोगी एग्ज़ाम देकर भी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, एग्ज़ाम देने के बाद आपकी लाइफ वैसी ही रहेगी जैसी राजघराने की बेटियों की होती है, समझिए आप। इप्सिता अपनी माँ की ये बातें सुनकर रो पड़ी, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे कहीं ना कहीं तो ये पता था कि उसकी माँ ऐसा ही कुछ सोचती है, लेकिन इस तरह से सीधे ही उसके मुंह पर ये बात बोल देंगी ऐसी उम्मीद नहीं थी इप्सिता को, इसीलिए उसे रोना आ गया। नंदिनी ने इप्सिता को चुप करवाते हुए कहा, इशु, रोना बंद कर, और अंकल आंटी, अगर इप्सिता ने एग्जाम नहीं दिए तो उसका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, प्लीज़ आप लोग एक बार उसकी बात भी समझिए। नंदिनी बोल ही रही थी कि सुहासिनी जी ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, ए लड़की, तुम इप्सिता की दोस्त हो और अब तक तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि इप्सिता कोई तुम्हारी तरह नॉर्मल फैमिली से बिलोंग नहीं करती है, हमारी फैमिली एक रॉयल फैमिली है और हमारे यहाँ सारी चीज़ों के रूल्स अलग होते हैं, इसलिए तुम इन सब चीज़ों में ना बोलो तो बेहतर होगा। सुहासिनी जी की बात सुनकर नंदिनी बिल्कुल चुप हो गई क्योंकि वो और कुछ नहीं सुनना चाहती थी। इप्सिता की माँ के डांटने पर नंदिनी एकदम चुप हो गई और इप्सिता ने भी आज इस बात पर ध्यान नहीं दिया और रोते हुए कहा, मम्मी, हमने आपकी सारी बातें मानी हैं, आप लोगों की खुशियों के लिए हमने अपनी सारी खुशियां दांव पर लगा दी, और आप हमारे एग्जाम के लिए एक बार भी रानीसा से बात नहीं कर सकती? सुहासिनी जी ने तुरंत इप्सिता की बात को मानते हुए कहा, हाँ, नहीं कर सकते, हम तुम्हारे एग्जाम को लेकर कोई बात नहीं करेंगे, ये तुम्हारे एग्जाम की दुहाई देकर टाइम मांगने की अब तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे पास बस यही एक हफ्ते का टाइम है, जो करना है कर लो, तुम्हारी शादी तभी होगी जब रानीसा कहेंगी। इप्सिता ने जैसे ही अपनी माँ के मुँह से ये बात सुनी, वो रोते हुए अपने पिता की तरफ देखने लगी, लेकिन इससे पहले कि उनके पिता कुछ बोल पाते, सुहासिनी जी ने उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया। इप्सिता बिल्कुल हताश हो गई और रोते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई। उदय ने इप्सिता को इस तरह रोते देखकर अपने माता पिता की तरफ देखकर कहा, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप दोनों इतने स्वार्थी हो सकते हैं कि आपको अपनी बेटी की खुशियों की कोई परवाह नहीं है। उदयवीर को ऐसा बोलते देखकर सुहासिनी जी ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, उदयवीर, बेहतर होगा कि आप भी इस बात को स्वीकार कर लें। उदयवीर ने ना में अपना सिर हिलाया और वो भागते हुए इप्सिता के कमरे की तरफ गया। नंदिनी भी उदयवीर के पीछे पीछे इप्सिता के कमरे में गई। इप्सिता ने कमरा अंदर से बंद कर लिया था, वो बुरी तरह से रो रही थी, उसने बेड पर लेटकर तकिए में अपना मुंह छुपा लिया और जोर जोर से रोने लगी। उदयवीर और नंदिनी भागते हुए इप्सिता के कमरे के बाहर गए। उन दोनों ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, ऋषि, दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो। उदय की आवाज सुनकर इप्सिता कुछ भी नहीं बोली। तभी नंदिनी ने भी दरवाजा पीटते हुए कहा, प्लीज इप्सिता, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इप्सिता बुरी तरह रो रही थी, उसने रोते हुए कहा, भाई, नंदिनी, प्लीज आप दोनों चले जाइए, हमें अभी किसी से कोई बात नहीं करनी। उदय इप्सिता की रोने की आवाज सुनकर तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, ऋषि, मम्मी पापा का गुस्सा तुम हमारे ऊपर क्यों निकाल रही हो, हमसे तो बात करो। नंदिनी ने भी इप्सिता को समझाते हुए कहा, एक बार तुम दरवाजा खोलो, हम कुछ ना कुछ सोचकर इस प्रॉब्लम को सुलझाएंगे। इप्सिता ने उन दोनों की बात सुनी लेकिन उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी उदय ने तेज आवाज में कहा, इशी, अगर आपने अभी दरवाजा नहीं खोला तो हम दरवाजा तोड़ देंगे, इसलिए जल्दी दरवाजा खोलो, हम तीन तक गिनेंगे। इशी, एक, दो। इप्सिता अपने कमरे में थी, उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। नंदिनी और उदय दरवाजे के बाहर खड़े थे, दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इप्सिता दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसे देखकर उदय और नंदिनी एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। दोनों के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। उदय ने फिर से तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, इशी, दरवाजा खोलो, हमें तुमसे बात करनी है, क्या तुम हमारी बात भी नहीं सुनोगी? वहीं दूसरी तरफ राजमहल में मासा का फैसला सुनकर अभिमन्यु के चाचा चाची बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने जैसे ही ये बात सुनी कि मासा अभिमन्यु की शादी एक हफ्ते में करने वाली है और लड़की के घर वाले भी इस बात को लेकर मान गए हैं, तो पल्लवी और नरेंद्र दोनों ही काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे। जैसे ही इप्सिता का परिवार वहां से निकला, उनके जाते ही नरेंद्र और पल्लवी गुस्से से तिलमिलाते हुए सीधे अपने कमरे में आ गए। कमरा बंद करके पल्लवी ने अपने पति पर चिल्लाते हुए कहा, देख रहे हैं आप, भाभी सा कितनी जल्दी अभिमन्यु की शादी करवाने पर तुली हुई है, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो लड़की वाले हर बात के लिए कैसे मान सकते हैं। पल्लवी काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। वहीं नरेंद्र चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, उसके हाथ में वाइन का ग्लास था। नरेंद्र उसे चुपचाप बैठे घूट घूट कर पी रहा था। क्रमशः